Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha. Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya Gopi Janavala Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya Gopi Janavala Yasoda Nandana Vraja Jano Ranjana Yasoda Yasoda Nandana Vraja Jano Ranjana Yasoda Jamna Tira Vanchari Jamna Tira Vanchari Jamna Tira Vanchari Jamna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Jamna Tira Vanchari Jamna Jamna Tira Vanchari Jamna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya Gopi Janavala Jaya Gopi Janavala Vagirvaradhari Jaya oh. यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन जमुना तीरावन चारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhesyam, Jaya Radhesyam, Radhesyam, Jaya Radhesyam. Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Goranitai, Jaya Goranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev.
Sri Sri Krishna Balaram ki, Sri Sri Gaur Nitai ki, Sri Sri Radha Syam Sundar ki, Lalita Vishakha Devi ki, Jagat Guru Sri Prabhupada ki, Premanande Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskirtyam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Isloke Bhakti Bhavati Nayashtiki. Hare Krishna. Ayam Srimad Bhagavatam Chautha Skand और चैप्टर 23 श्लोक संख्या 37. तो आज प्रातःकालीन वेला में आप सभी भक्तगणों का हम लोग अभिनंदन करते हैं और श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में सभी भक्तों का स्वागत करते हैं. और अभी हम लोग श्लोक की चर्चा करेंगे. मुक्तांग संगो भगवती अम्लां भक्तिम उद्वहन. मुक्तान्य संगो भगवते अम्लां भक्तिम उद्वहन. वैनस्य चरितं पुण्यं श्रृण्वात् सावत्य पठेत. शृणुयात श्रावते पठेत मुक्तान्य संगो भगवते अम्लं भक्तिम उद्वहन वैनस्य चरितं पुण्यम् शृणुया श्रावयेत पठेत मुक्तान्य संगो भगवते अम्लां भक्तिम उद्वहन वैनस्य चरितं पुण्यम् शृणुया श्रावयेत पठेत। अब दोहराइए, मुक्तांग संगो भगवते अम्लां भक्तिम उद्वहन वैनस्य चरितं पुण्यम् श्रिया श्रावयेत पठेत। मुक्तान संगो भगवते अम्लां भक्तिम उद्वहन वैनस्य चरितं पुण्यम् श्रृणुया श्रावयेत पठेत। माताजी, मुक्तान संगो भगवते अम्लां भक्ति उद्वहन पठेत। माताजी, मुक्तान संगो भगवते अम्लां भक्ति उद्वहन तम पुण्यम श्रृणुयात पठेत। मुक्त संगन भगवते अम्लां भक्ति उद्वहन वैनस्य चरितं पुण्यम् श्रृणुयात श्रावयेत पठेत। मुक्त अन्य संग समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर भगवती श्री भगवान के प्रति अम्लाम विशुद्ध भक्तिम भक्ति उद्वहन करते हुए वैनस्य महाराज वैन के पुत्र का चरितम चरित्र पुण्यम पवित्र श्रृणुयात सुने श्रावयेत सुनावे पठेत तथा पढ़े। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना सुनाना तथा पढ़ना चाहिए। आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना सुनाना तथा पढ़ना चाहिए। तात्पर्य, नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को विशेषतया श्रीमद् भागवत में वर्णित रासलीला के विषय में सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अभिन्न हैं। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए और किस प्रकार राज्य का आर्थिक विकास करना चाहिए और किस प्रकार शत्रुओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करने चाहिए आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नव दीक्षित भक्त को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को भक्ति की दिव्य स्थिति पर समझे तो भी वह पृथु महाराज के कार्यकलापों के संबंध में अवश्य सुने, जपे और अन्यों को सुनाए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसवान सुते देवी प्रणमामि हरि। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम लोग प्राय श्रीमद् भागवतम का और ये जो चौथा स्कंद 23वां अध्याय है ये सुनते आ रहे हैं, जिसमें महाराज पृथु का भगवत धाम गमन ये अध्याय का नाम है। प्राय करके सभी सीनियर भक्त गुरु महाराज आचार्य लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पृथु चरित्र को समझ सके और उन्होंने अपनी वाणी से सभी भक्तों को कृतार्थ भी किया। फिर भी मैं भी प्रयास करूंगा जितना भी थोड़ा बहुत कुछ ग्रहण किया है उसको आपके समक्ष रखने का, तो गलतियों पर ध्यान ना देते हुए अच्छाई को ग्रहण करेंगे तो मेरे ऊपर आपका अनुग्रह ही होगा। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त भक्ति की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पथ पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जो जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना सुनाना और पढ़ना चाहिए। भगवान पृथु महाराज का जो जीवन चरित्र है ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ना, पढ़ करके समझना, समझ करके दूसरे को समझाना, ये हमारे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। कई जगह ऐसा वर्णन आया है कि आप कभी रणभूमि में जा रहे हैं या कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो पृथु चरित्र को 3 बार पढ़ना चाहिए। पिछले श्लोकों में वर्णन आया है 3 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने का तात्पर्य पढ़ना चाहिए, पढ़ने से जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, मंद बुद्धि है, वह व्यक्ति विद्वान हो जाता है, विश्वविख्यात हो जाता है। जो निर्बल है उसमें बल प्रदान हो जाता है, और जिसका संसार में कोई अस्तित्व नहीं है उसको यश की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन रूपा जी ने किया है और श्लोकों का भी अर्थ है। तो प्रभु चरित्र को पृथु महाराज 27 अवतार थे, और उन्होंने किस प्रकार शासन किया, किस प्रकार एक आदर्श राजा की भूमिका निभाई, स्वयं भगवान होकर के नरलीला की तरह उन्होंने अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत किया। जैसे तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं में, विशेष करके जो दसवां स्कंध है, बहुत ही आनंद रखते हैं और बहुत ही रुचि रखते हैं। जैसे रासलीला, भगवान की वाली लीला, द्वारका लीला, तो इसमें प्राय करके भक्तों की रुचि बनती है, आनंद आता है। आनंद भगवान का ही नाम है, ये नहीं कहते हमको मजा आ रहा है, भक्तों की वाणी है आनंद आ रहा है, एंजॉयमेंट नहीं है, अनुभूति हो रही है भगवान की लीलाओं को सुन के। उनकी झांकी हमारे सामने कई बार ऐसा लगता है कि आ रही है, और हम लोग कुछ क्षण के लिए जब लीलाओं का स्मरण करते हैं तो उस झांकी में चले जाते हैं। जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले सखीगिरी पर्वत गया था, जो ब्रज में ही है, प्राय करके सभी लोगों ने देखा होगा। तो वहां पर मैंने देखा ललिता जी का विवाह स्थल है वहां, तो जो मेहंदी लगाई गई थी विवाह उत्सव में, उस समय की मेहंदी आज भी वहां चिन्हों के रूप में अंकित है, पद चिन्ह है भगवान के, ओम लिखा हुआ है, और विशेष बात देखी 56 कटोरा वहां पे पर्वत में अंकित है, जिसमें से भभगवान ने हाथ में ले लेके जो जो उनके अंदर प्रसाद था वो ग्रहण किया। तो जब उनको देखा हम लोगों ने, तो भगवान का स्मरण याद आया कि भगवान यहाँ बैठे होंगे, किस प्रकार से भोजन किया होगा, किस प्रकार से मंगल गीत गाए होंगे, किस प्रकार से जुगल जोड़ी सरकार, वहाँ सोफा बना हुआ है भगवान का जिस पे वो बैठे थे जहाँ मेहंदी लगाई गई थी। तो सुन करके देख करके उन चीजों को भगवान की छवि का स्मरण हुआ, और प्राय करके होता है। तो इसी प्रकार से रासलीला में बहुत सारी भगवान ने, वैसे तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, लेकिन हमारी बुद्धि के द्वारा जितना भी हम ग्रहण कर लें वही सफिशियंट नहीं है, लेकिन अनंत है भगवान की लीला। किसी ने बहुत कुछ अध्ययन किया है, आनंद लिया है, कई लोगों ने कम लिया है। तो भगवान के ऐसे ही 2-3 लीलाओं का मैं शॉर्ट में वर्णन करूंगा। जैसे एक बार भगवान ने गिरी धारण किया, और जब गिरिराजी धारण किया तो 7 दिन 7 रात तक नख पे धारण करके रखा, और ये बात देख करके सभी ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ कि छोटा सा कन्हैया, कई ग्वालों ने सोचा हमसे तो बहुत छोटा है, कई जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी सोचा कितना बच्चा है, और 7 दिन ऐसे एक पैर पे खड़े होना, एक उंगली पे गिरवर धारण करके रखना, ये आश्चर्य उनके लिए हुआ। और जब 7 दिन पूरे हुए, बहुत बड़ी लीला है, तो उस समय कुछ गोप ग्वाला गोपियों को शक हुआ, और वो कहने लगे कन्हैया भाई हमको तो थोड़ा शक होता है न, क्या साधारण व्यक्ति इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता, निश्चित रूप से आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। तो भगवान ने सोचा कि अगर ये लोग ये बात सोचेंगे तो जो मैं आनंद लेने आया हूं अपने नित्य पार्षदों के साथ, अपने सखाओं के साथ, तो उसमें विघ्न आ जाएगा, क्योंकि ये भगवान समझेंगे, मंदिर में स्थापित कर देंगे, शीशा बंद कर देंगे, माला चढ़ा देंगे, बस सुबह शाम आएंगे, मंगला के टाइम पे या संध्या आरती के समय, तो ये जो रस है वो खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर आपने इसको कैसे धारण कर लिया? बोले जो मेरा देवता है ना, उसने मुझे युक्ति बताई थी। ना क्या युक्ति बताई थी? उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था मेरे कान में, और उन्होंने ऐसा मंत्र दिया, बोले तू अगर इसका जाप करेगा ना कन्हैया, तो तेरे सामने जितने लोग होंगे ना, उन सब का आधा बल तुझ में आ जाएगा। मैंने उसका जप किया, तो उससे क्या है कि सब लोग मेरे सामने तो खड़े थे आप लोग, तो आपकी आधी ताकत मुझ में आ गई, और कुछ मेरी थी, उस कारण से मैंने गिरिराज को उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय, और राधे जीव की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने तो श्रीमती राधा रानी प्यारी जी की कृपा से और आप लोगों ने जो सहयोग किया, लाठी लगाई, उसके सहयोग से मैंने गिरिराज धारण किया। और जो गुप्त रहस्य है वो ये है कि मेरे जो देवता थे जिन्होंने ये पूजन कराया है, उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, तो उससे आप लोगों का आधा बल आ गया, बस मदमंगल उछल गया। वही तो मैं सोच रहा था कि कुश्ती में चार बार पीटा है मैंने इसको, है कितने बार इसको भडूडू खेलने में हराया, कितने बार घोड़ा बना के, यहां से घोड़ा भी बनता था तो मैं पैर जमीन में टेक के चलता था, पूरा वजन भी सहन नहीं कर पाता था, और आज गिरिराज जी उठा लिया, मेरा आधा बल चला गया, ये कांड हुआ, अब मैं समझ गया। तो ये जो लीला भगवान ने किया है, ये बहुत ही मधुर और आनंद लेने वाली है, और कुछ क्षण के लिए हमारी जो चेतना है, हमारे जो विचार हैं, उस छवि के दर्शन करते हैं जहां ये सीन गुजरा होगा। कई बार और भी ऐसी छोटी कई लीलाएं भगवान ने यहाँ की विस्तार से हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, खंडता मान की लीला किया भगवान ने कि राधा जी से डेली मिलने आते थे कृष्ण, डेली। तो जब डेली मिलने आएंगे तो प्राय करके भक्ति का भी एक अवमान का अंकुर उपज जाता है मन में। तो राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण बगैर मेरे दर्शन के सुबह नहीं रह सकते, मेरे हाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं और दर्शन भी करते हैं। तो ये बात आई तो उन्होंने एक छोटी सी झलक भगवान कृष्ण को दिखाई कि मैं भी इतना इंपॉर्टेंट हूं, फिर भी आपको दर्शन दे रही हूं, अब मुझे इतने हल्के में मत लेना। ये मन में भाव आया तो उन्होंने ललिता जी को बोला, देखो प्यारे श्याम सुंदर आ रहे होंगे, आप उनको गेट पर रोक देना और उनसे पूछना कि आप कहां से आए, क्या काम है, और मैं बिल्कुल केवाड़ के पीछे अपना बैठी हूंगी और मैं सब कुछ सुनूंगी। ऐसा देखना जो मैं सब कुछ सुनूं और देख भी सकूं, ऐसा मेरा चारपाई का बिस्तर का अरेंजमेंट करना। तो ललिता जी ने ठीक ऐसे ही किया। समय के अनुसार भगवान कृष्ण आए और जैसे ही आए तो अंदर घुसे चले गए बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि प्राय जैसे जाते थे वैसे ही चले गए, सामाजिक दर्शन करना है और दर्शन करके आ जाना है, फिर गायचरण करने जाना है। तो ललिता जी ने रोका, महाराज रुको, कहां से आए, क्या काम है, क्यों आए, और आप ऐसे घुसे चले जा रहे हैं, ये कौन सी सभ्यता है? अरे किसी के घर जाते हैं तो पहले नॉकिंग करना चाहिए, पूछना चाहिए हम किस लिए बैठे हैं, सामने वाला इतना पैसा खर्च कर रहा है, हमको यहां रखा है, और फिर आप हमारी नौकरी को खतरा में क्यों डाल रहे हैं? पहले आप हमसे मिलिए, हमको बताइए, फिर हम जाके पूछेंगे, आपका परिचय देंगे, उधर से जो मैसेज मिलेगा वो आपको पास करेंगे। अरे सखी आप मुझे नहीं जानते? बोले देखिए हम सब सखी हैं, आप ये परिचय मत दो कि आप हमको जानते हैं, आप ठीक ठीक बताइए आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनको जाके बोलो, बहुत सरल सा नाम बताया, घनश्याम बोल दो जाके कि घनश्याम आए हैं। तो जाके ललिता जी ने कहा, श्यामा जी आपसे कोई घनश्याम नाम के व्यक्ति मिलने आए हैं। घनश्याम? तो श्यामा जी कह रही अंदर से, यदि तुम हो घनश्याम तो वर्षों के तू जाए। अगर आप घनश्याम हैं, घनश्याम नाम तो बादलों का होता है, अगर आप बादल हैं, मेघ वर्षा करने वाले बादल, उनको बोलते हैं घनश्याम, तो आप मेरे आंगन में कीच क्यों करना चाहते हो? आप खेती में जाके, किसान के खेत में जाके बरसो, यहां बादल का क्या काम है? बस एकदम भगवान बोले, अरे याद हो गई, मैंने इतना सरल नाम बताया, श्यामा जी ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं और दूसरा नाम बताता हूं, बलराम जी को तो सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं हल्दर का भाई हूं, हल्दर के भाई हैं। तो मैसेज अंदर गया तो श्यामा जी बोली, हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, उसके भाई बच्चे बछड़ा होंगे छोटा। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर आप वास्तव में हल्दर के भाई हैं, जैसा कि मैंने उसके अर्थ को समझा है, तो आप खिरक में जाइए, आवारा मत घूमिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यापारी होते हैं, वो उठा के ले जाएंगे आपको और कहीं जाके हाट में बेच देंगे। भगवान बहुत आश्चर्य कर गए, कह रहे ऐसे करके फिर एक के बाद बोले कि मेरा नाम माखन चोर है, सभी लोग तो माखन चोर के नाम से जानते हैं, हालांकि भगवान कह रहे हैं सखी ये मेरा दुर्भाग्य है, लक्ष्मी पतहु पे या ब्रज में माखन चोर बता में मोए, मैं लक्ष्मी पति हूँ, उसके बावजूद भी लोग मुझे माखन चोर के नाम से जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, विश्व नाचे मेरी माया में, और सखी पूरा विश्व मेरी माया में नाचता है, मैं गोपी पकड़ नचा में मोए, मेरी माया में मैं मेरे सामने नहीं, मेरे सारे में नहीं, मेरी माया में नाचता है पूरा विश्व, लेकिन ये गोपी मुझे पकड़ के नचा रही हैं, बताइए क्या क्या अर्थ करके मुझे समझा रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा दुर्भाग्य समझो। फिर भी उन्होंने कहा कि एक सरल सा नाम है जो लगभग गलियों में भी लोग जान गए हैं मुझे चोर के नाम से। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है माखन चोर, ऐसे बता दो। तो उन्होंने कहा अरे चोर चालाक का चक्के का यहाँ क्या काम है, यहाँ हम लोग लेडीज लोग हैं और इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे एकदम क्लियर बोल के आ रहे हैं कि मैं चोर हूं, और ऐसे कौन आपको अंदर घुसने देगा, कह के उनको ऐसे करके उनके करीबन तो 24 नामों का वर्णन आता है। और भगवान शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होके नीचे मुंह करके निकल गए। वो ठीक है, नहीं पहचानते तो क्या करें। जैसे वो निकले तो चूंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है और कृष्ण के बगैर राधा तो रह ही नहीं सकती, अलाद नहीं सकती है, तो उन्होंने सोचा अरे कुछ मजाक ज्यादा ही हो गया, कहाँ प्यारे श्याम सुंदर, बोलो वो तो चले गए। अरे सखी ये क्या हुआ, मैंने ये क्या कर दिया सुबह सुबह, तो बड़ा आश्चर्य हुआ और एकदम घबरा गई, पसीना आ गया राधा रानी को, और कहने लगी हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं एक पल भी आपके बगैर नहीं रह सकती, आप जहाँ भी हो मुझे दर्शन दीजिए, मेरी गलती को माफ करिए, मैं तो माफी के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप तो चूंकि बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, आप मेरे ऊपर दया करके मुझे मेरी जो ढीठता जो मैंने किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए करके वो प्रार्थना करने लगी, मैं भगवान चले गए। अब जब ज्यादा रुदन हुआ तो ललिता जी, क्योंकि दोनों तरफ से तो ललिता जी का ही रोल है, तो ललिता जी बोली श्यामा जी आप थोड़ा धैर्य रखो, आप इतना अश्रुपात ना करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखो। तो जब ये बात आई क्या करेंगे, क्या श्याम सुंदर मिलेंगे, बोले आप थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो, निश्चित मिलेंगे श्याम सुंदर, वो हमसे दूर नहीं जाएंगे, हमको हमारे प्रेम पे पूरा भरोसा है, और मुझे तो अपने प्रेम पे पूरा भरोसा है, मैं उनको कहीं भी खोज लूंगी, आप थोड़ा धैर्य रखो। वो गई तो उन्होंने देखा कि निकुंज में और भगवान बैठे हैं, नीचे मुंह कर रखा है, वंशी रखी हुई है और अश्रुपात कर रहे हैं। आज मेरी श्यामा जी को क्या हो गया, ऐसा मुझसे क्या गलती हुई जो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, इतने अच्छे सरल नाम मैंने बताए उसके बाद भी उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना और इस प्रकार के अर्थ निकाले कि मैं भी हैरान हूं सुन करके। तो ऐसे करके मन में प्रायश्चित करती हूँ, रो रहे हैं, और अचानक से ललिता जी आ गए। जैसे ललिता जी आई तो कहा हे प्यारे श्याम सुंदर, आप यहां क्यों बैठे हैं? बोले सखी आपने देखा नहीं, आप तो प्रमाण हैं और प्रमाण होकर के मुझे पूछ रही हैं कि मैं यहां क्यों बैठा हूं। बोला वो तो ठीक है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है कि आप अकेले बैठ कर रोएं, तो इसका और क्या हल है? मेरे अलावा मेरे बस में केवल रोना ही तो है, और मेरे बस में क्या है? मैं अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया, अपने शब्दों से उनको ये नहीं बता पाया कि मैं कृष्ण हूं, आपसे मिलने आया हूं, तो और मेरे पास क्या है? अपने पास केवल ये रोना जोना है। यही अश्रुपात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरा हो क्या गया, मेरे कैसे दुर्भाग्य है। बोला चिंता ना करो, थोड़ा आप भी धैर्य रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोएं, इसका मतलब है टिट फॉर टैट। जैसे आपके साथ हमारी श्यामा जी ने किया, ऐसा आप उनके साथ कर दो, बराबर हो जाएंगे। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं? वो मुझे पहचानते नहीं, वो मेरे पास क्यों आएंगे? मैं तो उनके पास गया था, लेकिन वो क्यों आएंगे मेरे पास? बोलो वो काम मेरा है, वो मेरे को ऊपर छोड़ दीजिए आप। तो श्यामा जी को लेकर के और ललिता जी जाती हैं, निकुंज में भगवान बैठे हैं, और उनसे बोल के आए, देखिए आप बिल्कुल भी चूकना मत, ललिता जी कह के आई, अब जो आपको कहना है कहते रहना, चूकना मत, ठीक है? तो गए और जाके ललिता जी ने अपने पीछे श्यामा जी को छिपा लिया और अपने आप को धोती से कवर कर लिया और उन्हीं से बुलवाया, ए प्यारे श्याम सुंदर, मैं आपसे मिलने आई हूं और मुझे माफ कर देना। भगवान बोले आप कौन हैं? क्या गलती आपसे हुई है जो आप ऐसे गदगद वाणी में बोल रहे हैं? श्याम सुंदर आप मुझे नहीं पहचानते। अरे पहचानू तो तब जब आप मुझे परिचय दें अपना, आपका तो कंठ रुका हुआ है और यहां कुंज में आप मिलने आए हैं, क्यों? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम, मुझे ब्रिस्वान नंदिनी के नाम से जानते हैं। ब्रिस्वान नंदिनी, वृषभ, तो वृषभ तो बैल का नाम है और नंदिनी उनकी पुत्री गाय हुई, तो इस प्रकार से गायों का तो इस समय निकुंजों में और कुंजों में तो कोई काम नहीं है, वो तो जंगल में जाना चाहिए उनको। तो बहुत शर्मा गए, बोले प्यारे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, ये तो क्षमता आपके अंदर ही है जो आपने सहन कर लिया, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और तुरंत जाके राधा रानी प्रकट हो गई और भगवान ने उनको गले लगाया। बोले जुगल जोड़ी सरकार की। तो इस प्रकार की जो रासलीला है भगवान ने किया है, तो यहां जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो लीलाएं हैं सुनने में अत्यंत इच्छुक, बहुत ही अच्छी लगती है हमको, और ऐसे भक्त को ये समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीला भी ऐसी ही है। उनकी लीला और जो अभी जो लीला सुनी और जो सुनेंगे और जो सुन रहे हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है, वो भगवान ही हैं। उन्होंने जो कुछ लीला यहाँ किया, जिस प्रकार से आदर्श प्रस्तुत किया एक राजा के रूप में या एक भक्त के रूप में, तो ठीक ठीक हमें सुनना, सुनाना और पढ़ना चाहिए। जैसे यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे भक्त लोग, हमारी जो संस्था है वो प्रचार करने की संस्था है परंपरागत, तो हमारे प्रचार में क्या है, सबसे पहला श्लोक यही है कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिस किसी से आप मिलते हैं हरे कृष्णा बोलो और उससे पूछो भैया क्या करते हैं, क्या आप जप करते हैं, आपका दिनचर्या क्या है, नहीं है तो आपको इस प्रकार से दिनचर्या बनाना चाहिए, सुबह जप करना चाहिए, मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, भागवतम नित्यम भागवतम सेविया श्रवण करना चाहिए और उसके बाद अपने उद्देश्य को समझना चाहिए। और यही हो रहा है आज पूरे विश्व में, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा झंडा लहरा दिया कि पूरा विश्व उस घर के अंदर आ गया। झंडा ऊपर लगा रहता है और झंडा हिलता है, झंडे का मतलब क्या होता है, वो हिल के आवाज देता है इधर आओ, ऐसे हिलता है वो। तो अच्छे भक्तों का अच्छा भाव है, जैसे भाव से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, तो कहता है कि भाई इधर आओ, इधर है भगवान, मंदिर के ऊपर लगा रहता है, बोले आप इधर आइए, हवा के झोंका में लहराता हुआ बोलता है आप आइए इधर, भगवान इधर हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बसाया, उसके ऊपर ऐसा झंडा लगाया, आप आइए सब लोग इधर आइए, कहाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आइए, कृष्ण भावनामृत संघ ज्वाइन कीजिए, आपको शांति मिलेगी। और इसलिए बुला रहे हैं कि आप भटक गए हैं, आप रास्ता खो गए हैं, तो आपको उचित रास्ता कब मिलेगा, जब आप इधर आएंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में झंडा लहरा दिया, पूरे वर्ल्ड को स्वतंत्र कर दिया। हम लोग घर को स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड को, किस लिए, कि उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भगवत शरण ली, उन्होंने कृष्ण की भक्ति किया, अध्ययन किया, यजन किया उन्होंने, और अध्ययन किया, यजन याजन, पठन पाठन, पठन किया और पाठन किया, पढ़ करके लोगों को बताया, पढ़ा, यज्ञ किया, यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ किया, उन्होंने जबरदस्त जप किया अपने आप में। वैसे तो प्रभुपाद जी को प्योरिटी लाने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने भी एक आदर प्रस्तुत किया, दामोदर मंदिर में तपस्या किया, उनको तपस्या की आवश्यकता, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए ही दूत थे, प्रतिनिधि थे, ऐसा साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है या फिर उनके भक्त कर सकते हैं। एक बार चेतन महाप्रभु और उनके एक मित्र थे, मुझे मित्र का नाम याद नहीं आ रहा है, वो गंगा जी पार करके और गुरुद्वारे जा रहे थे, गुरु के पास जा रहे थे उनके दर्शन करने के लिए। तो चेतन महाप्रभु के पास बहुत सुंदर एक बुक्स था उनके हाथ में, और उनके जो मित्र थे उनके हाथ में भी एक बुक्स था। और जैसे गंगा जी में वो चलने लगे, नौका के द्वारा पार कर रहे थे, तो उसी समय उनका जो मित्र था चेतन महाप्रभु के बुक पे नजर आ गया और बोले, अरे निमाई ये क्या है? बोले भैया ये मैंने एक किताब लिखा है। अच्छा दिखाओ तो कैसा है? तो देखा, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने व्याख्या के साथ प्रस्तुतिकरण इतना सुंदर उन्होंने लिखा, प्रभुपाद जी ने, लिखेंगे भगवान है, लेकिन वो तो नहीं समझे कि भगवान है। तो उन्होंने देख करके बोला, अरे बहुत दुखी हुए पढ़ करके और देख करके। तो उनसे पूछा, अरे भैया आप इतना दुखी, अभी आप हंस रहे बात कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ जा रहे हैं, बीच में इतना बड़ा डिस्टर्ब, किताब देखने मात्र से हो गया, क्यों? अना क्या करूं, मैंने भी किताब लिखा है, लेकिन आपकी किताब को देख करके तो गुरु महाराज मेरी किताब को पास नहीं करेंगे, वो साइन नहीं करेंगे निश्चित रूप से। तो ये तो मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण हो गया, मैंने इतनी मेहनत करके लिखा लेकिन आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, ये मेरा दुख का कारण हो गया। अच्छा, तो उन्होंने लेके और किताब को फाड़ के गंगा जी में डाल दिया। उसी समय बोले, भैया अब तो दुख का कारण नहीं है। तो उन्होंने तुरंत महाप्रभु के पैर पकड़ लिए, बोले नहीं, साधारण व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता, निश्चित रूप से आप भगवान हैं, निश्चित रूप। तो भगवान कभी कभी अपनी झलक दिखा देते हैं और उसको भक्त लोग ही समझ पाते हैं कि हाँ ये, तो ऐसे ही साधारण व्यक्ति इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से भगवान के भेजे हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया और समझा दिया कि प्रचार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, किस प्रकार से गीता पढ़ना चाहिए, पढ़ करके फॉलो करना चाहिए। उन्होंने पहले पढ़ा, प्योरिटी द फोर्स, पहले आचरण में लाए। प्रभुपाद जी को आचरण में लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लाए, दिखाया कि तुम आचरण में लाओ, हम बद्ध जीवियों को ये संकेत किया उन्होंने, क्या पहले पढ़ो और पढ़ करके दूसरे को पढ़ाओ, समझाओ, प्रचार करो, जिससे वो लोग भी जिस सुख की अनुभूति आप कर रहे हैं उस सुख की अनुभूति वो लोग कर सकें, उनको भी वो सुख प्राप्त हो सके, उनको भी आनंद आ सके। आनंद, आनंद नाम ही कृष्ण का है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। आनंद भयो को मीन से कृष्ण ने अवतार लिया, अर्थात मन में जब भक्तों को आनंद आता है, मतलब समझो कि उनको अनुभूति हो रही है भगवान के नाम की, उनके गुण की, उनकी लीला की, उनका चिंतन जैसे करते हैं तो वहां अपना छवि जाती है और भगवान की छवि वहां आती है उस समय। तो ये प्रभुपाद जी ने किया। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रभु जो चरित्र है, जिस प्रकार से उन्होंने एक आदर प्रस्तुत किया, उसके हिसाब से हमें निश्चित रूप से और निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और सुना करके सुनाना चाहिए, जिससे वो लोग भी उसका आस्वादन कर सकें। और कोई व्यक्ति अगर और जब पढ़ेगा तो कृष्ण के चरणों में रति होगी, होगी निश्चित है, रति होगी तो मोह माया से छूटेगा व्यक्ति। अगर वो नित्य निरंतर अपनी दिनचर्या शास्त्र के अकॉर्डिंग बनाएगा तो वो निश्चित रूप से सुखी होगा। सुखी होगा मीन्स उसको आनंद की अनुभूति होगी, भगवान का कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन जिसकी कृष्ण के चरणों में रति नहीं है, भगवान के भागवत श्रवण में, सत्संग सुनने में कोई रुचि नहीं है, और वैसे बहुत विद्वान है वो, शास्त्रज्ञ है, जैसे श्लोक लिखा है, सर्ग आदि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, पूरी शास्त्र विद्या मुखस्थ हो, कंठस्थ याद हो, और वेद सभी याद हो, है कवित आदि गद्यम सुपद्यम करोति, और कवित्व लिखने में बहुत ही अच्छी शक्ति उनके पास हो, गद्य पद लिखने में, प्रस्तुतकरण करने में बहुत ही अच्छे ढंग से वो लिखते हों, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हों गद्य पद को, और सभी शास्त्र उनको मुखस्थ हों, याद हों, कंठस्थ हों, फिर भी हरे रंध्र पद में मनश्चेन लग्नम तत्किम 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 तत्किम, लेकिन उस व्यक्ति का अरे हर पद्मों में अगर प्रीति नहीं है, हरि चरणों में अनुराग नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर उसका क्या अर्थ है अध्ययन करने का, शास्त्र पढ़ने का अर्थ क्या है? कुछ अर्थ नहीं है। श्रमेव केवलम, पत्थर लेके आप 20 किलो का खड़े रहो, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी, पसीना आता रहेगा, लेकिन पूछा जाए काम कितना हुआ, कुछ नहीं, पत्थर को वहीं रख दिया। तो वो मुखस्त करने के बाद जो उसने मेहनत किया, श्रमेव केवलम, क्यों? कि उसका अनुराग नहीं था। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग चाहिए। एक बार मीरा जी संकीर्तन कर रही थी, और संकीर्तन करते करते कोई राग के जानकार पहुंच गए और जाके बोले, अरे अरे ये क्या हो रहा है, कितना सुंदर कीर्तन, महामंत्र चल रहा है, लेकिन कोई राग में नहीं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई काले सुर में गा रहा है तो कोई गोरे सुर में गा रहा है, ये क्या है ये, अरे कितना सुंदर गाना, कितना सुंदर भजन, पर इन लोगों ने तो हालत खराब कर दिया। तो अब इतना बड़ी भीड़ है, कीर्तन चल रहा है, तो उस कीर्तन में क्या करे वो? तो उसने एक युक्ति सोची, एक बोर्ड पे लिखा राग में गाओ, और लेके वो पूरी उसमें भीड़ में घूमने लगे कि कोई तो देख लेगा। तो जब वो मीरा जी के पास पहुंचे तो मीरा जी ने देखा, अरे ये राग के प्रेमी कोई आ गए। तो उन्होंने उसको धीरे से लिया और उसमें कुछ काट पीट नहीं किया, अच्छे लोग काट पीट नहीं करते, उसमें बुराई नहीं देखते, उसमें जोड़ दिया क्या, अनु, राग में गाओ लिख रहा था, वहां लिख दिया अनुराग में गाओ। भगवान के लिए राग की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? अनुराग, अनुराग चाहिए। एक से एक सुंदर गायक हैं, हैं, लेकिन उनके पास अनुराग नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ऐसे ऐसे संत हैं जो गाना जानते भी नहीं है। सूरदास जी ने कभी गाना गाया? कभी नहीं गाया। मीराबाई ने कोई गाने गाए? जैसा हुआ लेकिन अनुराग में गाया। तो भगवान को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत है, न कि राग की। तो हमें अनुराग से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, अनुराग होना चाहिए उसके चरणों में, तभी हमारी जीवन की सार्थकता है, अन्यथा कोई किमत, फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज का, अगर चरणों में अनुराग नहीं है तो। तो ये जो चीजें भगवान सिखा रहे हैं, वैसे एक चीज और मैं बताने जा रहा था कि जो मनुष्य का देह है ये बहुत दुर्लभ है, और इस देह को प्राप्त करना सुदुर्लभ है। पहले तो देह ही दुर्लभ है, इस मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है, और अगर मिल भी गया मिलता ही नहीं है, ये सुदुर्लभ है। जैसे भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, या दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ कहा, वो महान आत्मा बहुत दुर्लभ है जो कृष्ण को ठीक ठीक समझता है, दुर्लभ ही नहीं है। अब सोचो हमने भगवान को समझा गुरु परंपरा के हिसाब से, हम कितने भाग्यशाली हैं, उस सुदुर्लभ चीज को कितने आसानी से हम लोग हमेशा कृष्ण की चर्चा करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, गीता अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, कृष्ण प्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, उसको ग्रहण कर रहे हैं डेली, उसको पान कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं, जो सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है। तो यहां यही कह रहे हैं, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह जो मनुष्य की जो देह मिली है हमको, ये कैसी है, जो सभी पुण्य फलों का मूल कारण है ये देह जो है, और ये देह कैसी है, सुदुर्लभ, बहुत सुदुर्लभ है, लेकिन हमको कैसी हो गई, सुलभम, जो सुलभ हो गई, और उसमें भी प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और इसमें भी ये नौका रूपी देह है, भव सागर रूपी संसार है, इसमें नौका के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, और अनुकूल हवा मया अनुकूल, हवा कैसी है, अपने हिसाब की, जो पीछे से धक्का दे रही है, और गुरु कर्णधार जो पतवार है, कौन है, गुरु के रूप में कृष्ण, गुरु के रूप में प्रभुपाद, जो हमको लेके जा रहे हैं, केवल हमको अब बैठना है और उसको फॉलो करना है जो गुरु कर्णधार है। और उसके बाद भी अगर हमने ये कार्य नहीं किया, भगवत धाम नहीं गए, भगवत चर्चा नहीं किया, तो क्या है वो, पुमान भवाब्धिम न तरेत से आत्मा, और वो कैसा व्यक्ति है, फिर तो वो आत्मघाती है। अगर व्यक्ति इतनी सुख सुविधा के बाद भी हरि चर्चा नहीं किया, कृष्ण से प्रेम नहीं किया, उसके चरणों में अनुराग नहीं हुआ, तो फिर वो आत्मा, फिर तो वो आत्मघाती है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के चरणों में अगर रति प्राप्त करनी है तो क्या करना है, यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ। क्या है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम वाणी को विराम करते हैं, गलती के लिए माफ करना। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी है एक मिनट का समय, पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा।